देवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाऊनं वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगं तसं सिद्धम् सिद्धं प्रणमीय शिरसा ओच्छं वेदगमायारम।
यह श्री बिरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 44 पर आ गए, 44। अनुभाग उदीर्णा का प्रकरण, अपना उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीर्णा का प्रकरण शुरू हुआ है। हमने ये बात यहाँ से शुरू की थी 36 पेज से। अब ये जो बताया था इसमें, जो उसी की बात उच्चारणा के अनुसार यहाँ बताएंगे। यहाँ कहते हैं कौन कौन से अनुयोग देखे अभी हमने, कितना है उतने स्थान ये घाती यानी संज्ञा नाम का अनुगम देखे। अब उसके आगे ये जो सर्व उदीर्णा नौ सर्व उदीर्णा वगैरह होती है वो यहाँ मूल में नहीं बताई चूर्णी सूत्रकार ने, उच्चारणा के अनुसार उसको बताएंगे। यहाँ सुगम होने से सूत्र द्वारा नहीं कहे गए सर्व उदीर्णा आदि का उच्चारणा के अनुसार अनुगम करते हैं। हाँ नंबर अभी हम इसमें देंगे, अभी तो संज्ञा वाला तो हो गया एक। यथा सर्व अनुभाग उदीर्णा, ये नंबर 2, पहली संज्ञा हुई ना, और नौ सर्व अनुभाग उदीर्णा, ये नंबर 3। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से सब प्रकृतियों के, सब स्पर्धकों की उदीर्णा करने वाले के सर्व अनुभाग उदीर्णा होती है, और उससे कम की उदीर्णा करने वाले के नौ सर्व अनुभाग उदीर्णा होती है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जाना जाए, हर एक मार्गणा में ऐसा ही समझना। अब कहते उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण और अनुत्कृष्ट, इसको नंबर 4 और 5। उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सब प्रकृतियों के सबसे उत्कृष्ट अनुभाग स्पर्धकों की उदीर्णा करने वाले के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है, और उनसे न्यून स्पर्धकों की उदीर्णा करने वाले के अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। उसके पश्चात जघन्य अनुभाग उदीर्णा और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा, नंबर 6 और 7।
यह नोट नेसेसरी के सर्व और उत्कृष्ट पे, सब उत्कृष्ट होगा उसको सर्व होगा ऐसा नहीं है के होगा
नहीं, उत्कृष्ट वाले के तो सर्व होगा।
हाँ।
क्योंकि जहाँ ऊपर के स्पर्धकों से हो रही है उदीर्ण,
हाँ।
उसके नीचे से स्पर्धकों से भी होगी।
हाँ।
परंतु हम वहाँ किसको कंसिडर कर रहे हैं, उत्कृष्ट हो रही कि नहीं हो रही, सर्वे ने सभी स्पर्धकों में से हो रही है, और उत्कृष्ट यानी वो टॉप मोस्ट वाले से हो रही है अपेक्षा
मैक्सिमम
कथन में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है।
नहीं, यहाँ पे उत्कृष्ट में तो अविभाग की अपेक्षा बात हो रही
है, वहाँ भी सर्व में भी हरेक अलग अलग स्पर्धकों के अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है।
हाँ तो उत्कृष्ट होगा,
यही चर्चा पहले भी हुई थी अपनी, सर्व को उत्कृष्ट स्थिति में भी ऐसा ही प्रसंग आता है, स्थिति में भी सर्व स्थिति उदीर्णा, सभी स्थितियों में से उदीर्णा होनी और उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट में से होनी, वहां के निषेध नीचे आना, बात तो वही है, जहाँ ऊपर से आ रही वो नीचे से भी आ ही रहे है, परंतु यहाँ हमें उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है इतना देखना है, वहाँ सभी में से होता है क्या कुछ कम में से होता है वो देखना है। जैसे अनुत्कृष्ट कहो या उत्कृष्ट को अजगण्य भी कहेंगे, तो ये जो अपेक्षा कथन में आती है वैसे वहां पर भी आती है। सभी की अपनी अपनी, सभी का अर्थ क्या है, सब प्रकृतियों की, यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बात, हर एक प्रकृतियों में ऐसा लगाना, हर एक प्रकृतियों में ऐसा वो कथन होना चाहिए, सब प्रकृतियों
में प्रत्येक की अपनी अपनी जो उत्कृष्ट है वहाँ पे सर्व उदीर्णा होगी, पर सर्व उदीर्ण होगी वहाँ पे उत्कृष्ट अनुभव होगा ऐसा मैं पूछ रहा हूँ।
सर्व तभी कहेंगे जब जगन्य से उत्कृष्ट सभी अनुभव मौजूद है, उसके बिना उसको सर्व कैसे कहेंगे। सभी जितने स्पर्धक है,
मैक्सिमम
जितने पॉसिबल है,
क्योंकि हमने देखा था एक ही परिणाम से उसमें अनुभाग की अपेक्षा वेरिएशन हो सकता है।
अभी उसकी बात नहीं चल रही है, अभी परिणामों की बात नहीं चल रही है, अभी जो सत्ता में जितने स्पर्धक है सभी में से उदीर्णा हो रही है उसको सर्व उदीर्णा की। नहीं नहीं वैसा नहीं, सभी स्पर्धकों में से उदीर्णा हो रही है, कुछ परमाणु नीचे आ रहे हैं, स्पर्धक सभी में से आ रही है। अभी जघन्य और अजघन्य ये दो 6 और 7, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सब प्रकृतियों के यानी अपनी अपनी प्रकृति, सभी प्रकृतियां जो है, उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही है, सबसे जघन्य अनुभाग स्पर्धकों की उदीर्णा करने वाले की जघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है, और उनसे अधिक अनुभाग स्पर्धकों की उदीर्णा करने वाले के अजघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है, यानी जघन्य अजघन्य में उसका अनुभाग कितना है उसकी बात चल रही है यहाँ पर बच्चों। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अभी सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, 8, 9, 10 और 11। पहला तो अपना संज्ञा वाला हुआ, तो निर्देश ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग उदीर्णा क्या सादी है अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है, तो कहते हैं सादी और अध्रुव है, क्योंकि उत्कृष्ट लगातार नहीं रह सकती किसी जीव को, अनादि से तो नहीं हो सकती, कभी उत्कृष्ट होगी कभी अनुत्कृष्ट होगी। और जघन्य कब होगी,
तो सपक श्रेणी में अपनी अपनी
मिथ्यात्व की चल रही है,
मिथ्यात्व के सब।
हाँ, प्रथम उपशम होने के पूर्व, हाँ। करण लब्धि का अंतिम समय,
अच्छा मैं जरूर
उदीर्णा के बाद चल रही है ना यहाँ पर जघन्य अनुभाग उदीर्णा, अभी वो बात आएगी। वैसे तो सत्ता की अपेक्षा हमने एक इंद्रियों में देखा था, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तकों में जघन्य होता है अनुभाग, अब यहाँ तो स्वामित्व में बात आएगी अलग से। अजघन्य यानी जघन्य जब नहीं हुई है, अनादि से तो जघन्य नहीं हो सकती है, जघन्य जब जाके होगी तो उसके पहले यानी जघन्य क्या है, अनादि है कि सादी है, ये प्रश्न है,
सादी
और अध्रुव है। अजघन्य अनुभाग उदीर्णा क्या सादी है अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है, तो कहते सादी है अनादि है, अनादि से तो अजघन्य थी, जब रुक जाएगी और फिर शुरू होगी तो मिथ्यात्व की जो उदीरणा है समय दृष्टि के नहीं है, फिर दोबारा शुरू होगी मिथ्यात्व में आने पर, तो उसको शादी कहेंगे। ध्रुव के अध्रुव हैं 16 कषाय, 9 कषाय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीरणा, क्या शादी है अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है, तो शादी और अध्रुव है। कषाय में तो उदय बदलता रहता है, तो उदीरणा भी शादी ही होगी, और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का तो वो तो अनादि से है ही नहीं प्रकृतियां, वो तो शादी ही होगी। आदेश से नारकियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा शादी और अध्रुव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए विशेषार्थ। हाँ, संज्ञा में हमने घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा देखी। नहीं नहीं, अभी तो अनुभाग उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा का कथन है, उसमें जो 24 अनुयोग द्वार है, उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा के पेज नंबर 36 से शुरू हुआ था, 36 पृष्ठ पर लास्ट लाइन देखो, 36 पेज लास्ट में 24 है, संज्ञा और सर्व उदीरणा से लेकर अल्प बहुत्व तक है ना, तो संज्ञा का तो उन्होंने चूर्णी सूत्रकार नहीं बताया, और आगे के अनुयोग जो उच्चारणा के अनुसार बता रहे हैं, तो उसमें अभी हम हाँ पृष्ठ संख्या 46 पर वो विशेषार्थ हम देख रहे थे। आगे उत्कृष्ट और जघन्य स्वामित्व का जो कथन किया है उससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व प्रकृति की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग उदीर्णा सादी और अध्रुव होती है, किंतु अजघन्य अनुभाग उदीर्णा सादी आदि चारों प्रकार की होती है, शेष कथन सुगम है। अभी स्वामित्व का अधिकार आ गया, एक जीव की अपेक्षा बात चलेगी। नंबर 12
यहाँ पे आता चारों प्रकार की, तो द्वितीय दिगोत की अपेक्षा ले सकते हैं, क्योंकि पंचेंद्री में जाएगा तो अंतर्मुख अंतर्मुख में वो उत्कृष्ट हो जाएगी।
किसकी?
ये मिथ्यात्व की, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे अंतर भी
उत्कृष्ट क्यों होगी, बढ़ेगी।
अंतर हमने देखा था असंख्यात लोक प्रमाण काल है उत्कृष्ट का।
हाँ।
तो जो अनादि से तो हो ही नहीं सकती, तो नित्य दिगोत की अपेक्षा लेना है, क्योंकि पंचेंद्री में जाएगा तो भी उसकी अनादि हो सकती है।
कौन सी? उत्कृष्ट की?
नहीं नहीं, अजघन्य की।
अजघन्य कहीं भी हो अनादि से ही है, और अच्छा, जब रूप के फिर शुरू होगी तो शादी हो जाएगी। अब स्वामित्व में आपके प्रश्नों का उत्तर आएगा जहाँ कहीं भी। एक जीवे न सामित्तम, क्योंकि हमने मोहिनी की इन जनरल अपेक्षा बात की, अभी एक एक प्रकृति की बात करेंगे। अब एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का अधिकार है, यहाँ से एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का अधिकार जानना चाहिए, इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला यह वचन है। यानी वो सर्व नो सर्व वगैरह तो उच्चारणा के अनुसार बताया, अभी यह चूर्णी सूत्र में ये सूत्र बता रहे तम जहां यथा, यह सूत्र सुगम है। वह स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उसमें सर्वप्रथम उत्कृष्ट स्वामित्व का अनुगम करते हैं, ओह और आदेश के भेद से उसका निर्देश दो प्रकार का है, उनमें से ओह का कथन करने के लिए कहते हैं। मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। यानी यह प्रश्न समझ में आवे ऐसा है। मिच्छा इट्ठिस सन्निस सौवाहिम पज्जत्तिहिम पज्जत्तयस्य पज्जत्तयदस्य उक्कस्य संकिलिट्ठस्य, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त तथा उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुए संगी मिथ्या दृष्टि के होती है। यहाँ पर शेष गुणस्थानों में प्रकृत स्वामित्व की संभावना की आशंका का निराकरण करने के लिए मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश किया। असंगी क्योंकि यहाँ उदीर नयन उदय का सवाल है ना, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। असंगी पंचेंद्रिय से लेकर नीचे के समस्त जीव समासों में प्रकृत स्वामित्व का निवारण करने के लिए सूत्र में संगी पद का निर्देश किया है। संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त यानी लब्धि अपर्याप्तकों या निवृत्ति अपर्याप्तकों में प्रकृत स्वामित्व की संभावना नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए सूत्र में सवाहिम पज्जतिहिम पज्जत्त यदस्य यह विशेषण दिया है। इससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त के ही प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, यानी पर्याप्ति पूरी होने पर, अन्य के नहीं यह सिद्ध हुआ। निवृत्ति अपर्याप्त लिखा, वो निवृत्ति अपर्याप्त जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई और ये उसके पश्चात की बात है। हाँ, उसको निवृत्ति पर्याप्त बता दिया है। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त वहाँ कहा है, यानी सभी पर्याप्तियों पूरी होने पर ही उसका उत्कृष्ट संकलेश परिणाम होगा। उसमें भी सर्वोत्कृष्ट जो अंतिम संकलेश परिणाम है मिथ्या दृष्टि के योग्य जो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम है, उससे ही परिणत हुए उस जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा होती है, अन्य के नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपकस संकलिष्ठ से यह वचन कहा है। शंका, अन्य योग के व्यवच्छेद द्वारा सबसे उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले के ही प्रकृत स्वामित्व का नियम किस लिए किया है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि मंद संकलेश या विशुद्धि रूप से परिणत हुए जीव के सर्वोत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा नहीं बन सकते। इसलिए उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म स्थान के अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों को ये जिसका उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म स्थान है उसके अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों को उत्कृष्ट संकलेशवश अति स्वल्प घटाकर तत्प्रायोग्य अधस्तन अनंत गुणहीन चतुस्थान अनुभाग स्वरूप से उदीर्णा करने वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व की अनुभाग उदीर्णा का उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, यानी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का स्वामित्व होता है चाहिए। यही सूत्र का समुच्चय अर्थ है। अति स्वल्प घटाकर कहा,
और अधस्तन अनंत गुणी चतुस्थान मीन्स ये क्या असंख्या
चतुस्थान का चाइल्ड वाला,
अच्छा सही,
स्थान की अपेक्षा, और अति स्वल्प घटाकर अधस्तन अनंत गुणहीन अनंत गुणा नियम ने जैसे आठ वाला है,
हाँ उसमें से करे,
और अंतिम स्थान आठ नहीं होता है, उसके पहले वाला वो होता है, है। अतिस्थापना तो होगी वहाँ पर, वहाँ अतिस्थापना होगी, इसलिए हमने देखा था ना वो वाला जो है नीचे के आठ के नीचे उसका घटेगा, नीचे का जो अंतिम आठ था नहीं समझ, हाँ तो उसका उतना घटकर अनंत गुणहीन होकर
अनंत भाग हानि होगी।
अनंत भाग नहीं, अनंत
गुणा बताया ना,
ये तो स्वल्प कर रहा है,
वो वही स्वल्प ही है,
ये दूसरे
सत्कांग के नीचे आएगा, आठ और ऊ के बीच में, नीचे के आठ के और ऊ के बीच में आएगा।
ये अनंत स्वल्प मतलब क्या,
यानी बहुत स्पर्धक नीचे नहीं आएगा, एक स्पर्धक नीचे आएगा तो अनंत गुणहीन बन गया। आगे कहते यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से ही उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होती है, ऐसा नियम नहीं। किंतु तत्प्रायोग्य अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म से भी, तत्प्रायोग्य कहा उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होनी चाहिए, अन्यथा ये हमने प्रस्तावना में पढ़ा था यही वाक्य, स्थावर काय में से आकर त्रस्त कायकों में उत्पन्न हुए जीव के सर्वदा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म की उत्पत्ति का अभाव प्राप्त होता है। यथा यहाँ ये कहना चाहते हैं, एक इंद्रिय में तो अनुभाग भी उसके भी घटना होता है, तो समुत्पत्ति को जाते हैं अनुभाग घट के, एक इंद्रिय में से आया है त्रस्त में, एक इंद्रिय के योग्य अनुभाग सत्कर्म है उसका। अब त्रस में आएगा तो उसके तो पहले अपर्याप्त अवस्था में है, अपर्याप्त अवस्था में है तो उसका तो अनुभाग सत्ता में जो अनुभाग है वो कम है, तो कम है तो उसको उत्कृष्ट संकलेश कैसे होगा और उत्कृष्ट उदीर्ण कैसे होगी, ये प्रश्न है। क्योंकि उदय तो कम अनुभाग वाले का चल रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि यथा योग्य अनुत्कृष्ट होने पर भी
उत्कृष्ट संकलेश।
अभी यह यथा करके बता रहे, आगे देखेंगे हम, पढ़ेंगे इसका। स्थावर कायिकों में से आकर त्रस्त कायिकों में उत्पन्न हुए जीव के अनुभाग सत्कर्म अनुत्कृष्ट होता है, क्योंकि वह द्विस्थानीय है। आपका उस दिन प्रश्न था ना, अनुभाग कांडक, उस पर तो ये पूरा ही स्थिति अनुभाग विभक्ति में तो बंद की अपेक्षा और घात की अपेक्षा, लंबा चौड़े प्रकरण तो उसी पर है, कितने स्थान उत्पन्न होते हैं देखना आप। वो हमें बताएंगे पढ़ के। हाँ, बंद समुत्पत्ति खाता समुद्र सब अनुभाग की अपेक्षा से बातें है सारे। हाँ, और हतः तो समुत्पत्ति कितने कितने स्थान देखे थे, और वही वो ऊ और आठ के बीच में कितने स्थान उत्पन्न होते उसकी बात देखी थी हमने,
तौला में देखी थी क्या,
ये इसी में
पांचवी
में अंत में बहुत बड़ा प्रकरण उसी का है।
क्या लिखा वो तुझे लिखा है बता,
क्योंकि वह द्विस्थानीय है, सत्कर्म अनुत्कृष्ट होता है क्योंकि वह द्विस्थानीय है। पुनः इस सत्कर्म की उदीर्णा करने वाला, क्योंकि जो सत्ता में उसकी उदीर्णा करेगा ना, इस सत्कर्म की, इस यानी वो द्विस्थानिक सत्कर्म है उसकी उदीर्णा करने वाला पंचेंद्रिय जीव चतुस्थानीय अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है। योग्य कर दिया अनुत्कृष्ट भी चतुस्थानीय ही है, टॉप मोस्ट वर्गना है वही वही उत्कृष्ट है, अंतिम स्पर्धका के सेकंड लास्ट वर्गना भी कहेंगे तो भी अनुत्कृष्ट कहेंगे उसको, क्योंकि उसका एक अनुभाग प्रतिशत कम है उसमें।
ये द्विस्थानीय कैसे हो गया,
एक इंद्रिय में उसने हत समुत्पत्ति करके वो आया है और उसके द्विस्थानीय है, वही तो हमने देखा था ना, एकेंद्रिय में जाने पर वो एकेंद्रिय के योग्य बंध करेगा और एकेंद्रिय के परिणाम के वश वहां भी उसके हत समुत्पत्ति करके वो आया है, ये लंबे काल वहां घूम के आया है। नहीं, द्विस्थानीय होगा।
हाँ,
अब इस विधि से बंद को प्राप्त हुए चतुस्थानीय अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के द्वारा वही जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंध के योग्य भी होता है। द्विस्थानीय की उदीर्णा करने वाले ने चतुस्थानीय अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध किया, अब वो चतुस्थानीय अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला उत्कृष्ट संकलेश भी कर सकता है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी कर सकता है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम से परिणत हुए उस जीव के उसके होने में कोई विरोध नहीं है, यानी वो नया बंध करता है उत्कृष्ट का।
ये भी पर्याप्ति के पश्चात ही होगा,
अभी उसकी तो बात उन्होंने बता दी। किंतु यदि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के बिना उत्कृष्ट अनुभाग का उदय या उदीर्णा नहीं होती ऐसा नियम हो तो उसके उत्कृष्ट उदय का अभाव होने से उसका अविनाभावी उत्कृष्ट संकलेश का अभाव होने से उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्वकाल नहीं होगा। अभी ये बात की यहाँ बात बताते महत्व की बात क्या बता रहे देखो, यानी जो अनुत्कृष्ट अनुभाग किया था उसने चतुस्थानीय था, उसके उदय उदीर्णा में वो नया उत्कृष्ट बंध कर सकता है उत्कृष्ट संकलेश परिणाम के कारण। और उसी समय उसी के कारण वो उत्कृष्ट अनुभाग का बंध भी करता है, क्योंकि उस काल में उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से परिणत हुए जीव के ऐसा उत्कृष्ट अनुभाग बंध होने में कोई बाधा नहीं है। अब पॉसिबिलिटी सोच रहे, यदि ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, ये बात करें। यदि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के बिना, अभी उसकी सत्ता में तो अनुत्कृष्ट अनुभाग है, उसी की उदीर्णा चल रही थी, तो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के बिना उत्कृष्ट अनुभाग का उदय या उदीर्णा नहीं होती ऐसा अगर नियम हो तो, यह हमने नियम क्या देखा, यथा योग्य अनुत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट की उदीर्णा होती है क्योंकि उसके परिणाम वैसे है। अब कहते अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो उसके उत्कृष्ट उदय का अभाव होने से उसका अविनाभावी यानी उत्कृष्ट उदय नहीं होगा कर्मों का अनुभाग का, तो नया उसका उत्कृष्ट संकलेश परिणाम भी नहीं होगा, और उत्कृष्ट संकलेश परिणाम नहीं होगा तो उत्कृष्ट बंध भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले के लिए उत्कृष्ट उदीर्णा हो सकती है,
उत्कृष्ट संकलेश होता है और बंध होता है,
उदीर्णा उत्कृष्ट ही होगी वहाँ पे, वहाँ पे ऊपर
उदय या उदीर्णा नहीं होती, दोनों लिया
उदय और उदीर्णा नहीं होगी,
ऐसा नहीं होगी तो ये प्रश्न पड़ेगा।
हाँ।
अभी पूरा तो पढ़ लो, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की उत्पत्ति का अभाव प्राप्त होता है, यानी एक इंद्रियों में से आने वाले को कभी उत्कृष्ट अनुभाग होगा ही नहीं ऐसा मानेंगे तो, क्योंकि जितना उदय है उतनी उदीर्णा हो रही उसकी, उदय नहीं जितना सत्कर्म है उतना ही उदय उदीर्णा माननी पड़ेगी। इसलिए उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले ये शब्द एक डाला है, तत्प्रायोगी शब्द डाला है, यानी क्या कंडीशन चाहिए, उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता चाहिए या तत्प्रायोग्य अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले सर्वसंकलिष्ट यानी सबसे अधिक संकलेश वाला संगी मिथ्या दृष्टि जीव के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का स्वामित्व है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा के स्वामित्व का निर्णय करके अब इसी के द्वारा जिनके अर्थ का ज्ञान हो गया है ऐसे अन्य कर्मों के भी प्रकृत स्वामित्व का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये बात नहीं, कितना यथा योग्य अनुत्कृष्ट अनुभाग हो
हाँ, तो उनका कहना बराबर
तो भी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम होता है और उत्कृष्ट बंध भी होता है।
हाँ, उनका कहना क्या है कि उदय के अनुसार परिणाम नहीं होते, परिणाम के उदय।
हाँ, ये अनुभव के बारे में ये बात करे, यथा योग्य ने उसके उतने रेंज कम है तो भी उत्कृष्ट संकलेश परिणाम हो सकता है। यानी सर्वथा कर्म के अनुसार ही कार्य होता है, ऐसा अगर मानेंगे तो एक इंद्रिय में से आए हुए के तो सत्ता में तो कम पड़ा है ना, उसका उत्कृष्ट बंध क्यों हो रहा है, उत्कृष्ट संकलेश भी क्यों हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो अनुत्कृष्ट अनुभाग वाला जीव है तत्प्रायोग्य, उसके उदीर्णा में जितने डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस वाला अनुभाग का वहाँ पे उदय में आएगा तो उसका उत्कृष्ट संकलेश हो सकता है।
डिफरेंस वाला उदय में आने वाला ऐसा नहीं लेना है,
क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश का भी होगा, डिफरेंस जब ज्यादा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट होगा
वैसा नहीं लेना। डिफरेंस ज्यादा कहेंगे तो वो जघन्य होकर उदय में आएगा, मानना पड़ेगा उसको। उत्कृष्ट कैसे कहेंगे, किस फॉर्म में उदय में आना चाहिए, उत्कृष्ट रूप से उदय में आना चाहिए, कम से कम करके। यहाँ क्या लिखा है, उत्कृष्ट कहा किसको, अति स्वल्प घटाकर। विशुद्धि होगी तो बहुत घटाएगा। पेज नंबर 47 पर नीचे के पैराग्राफ की पहली लाइन पर फिर पढ़ेंगे, उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के स्थान के अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों को उत्कृष्ट संक्लेशवत वश अति स्वल्प घटाकर तत्प्रायोग्य अधस्तन अनंत गुणहीन चतुस्थान अनुभाग स्वरूप से उदीर्णा करने वाले। चतुस्थान ही रखा है और मिनिमम जितना पॉसिबल घटा सकते उतना घटाकर उदय हो रहा है, यानी उदय उत्कृष्ट रूप से, यानी उदय में, यानी उदीर्णा होकर उदय में आने वाले में इतना तो अनुभाग रहेगा। अति स्वल्प घटाकर कहा ना, इसी को उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा कही। हाँ, होगी ना वो बरोबर है, यानी उसने घटाकर उतना घटाकर उतनी उदीर्णा की। किस फॉर्म में उदीर्णा की, अनंत गुणहीन फॉर्म रूप से उदीर्णा की, तो उतनी ही उदीर्णा, किसी ने उतना ही बंद है सत्ता में उसकी, उतनी उसके अविभाग प्रतिच्छेदों से उतनी उदीर्णा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे किसी ने 100 बांधे हैं और 100 में से घटाकर उसने 90 करके उदय में आए, उसके बदले किसी के पास 95 थे, उसने 90 करके उदय में आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा।
उसी को उत्कृष्ट उदीर्णा कहेंगे ना। कितना घटा है उससे मतलब नहीं है, कितने अधिक से अधिक अनुभाग रूप से उदय में आ रहा है, उदीर्णा हो रही है, उसकी बात है यहाँ। विशुद्धि ज्यादा होगी तो और अनुभाग और घटेगा।
तो
मैक्सिमम संकलेश परिणाम वाला तो मिनिमम घटाएगा ना वो, परंतु जिसके थोड़ा यथा योग्य तत्प्रायोग्य, इसलिए कहा तत्प्रायोग्य थोड़ी सत्ता थी, ये थोड़ा अनुभाग वो भी उस रूप से उदय में आ सकता है ना। जैसा 100 वाला है वो 90 रूप से उदय में आया, तो 95 वाला 90 रूप से उदय में आ सकता है कि नहीं, ये बात, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश चल रहा है।
तो 100 वाला को 90 रूप से उदीर्णा होगी वो उत्कृष्ट कहलाएगी, कि 95 वाले को 90 रूप होगी वो दोनों को,
वो कितना कम किया उसकी बात नहीं यहाँ पर।
अच्छा, उदीर्णा किस रूप हो रही है,
उदीर्णा किस रूप हो रही है।
तो यहाँ उदय की अपेक्षा जो अनुभाग की उदय हो रहा है वहाँ पे
उदीर्णा होकर उदय हो रहा है।
हाँ, उदीर्णा होकर वही उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहलाएगा। हाँ, वहाँ पे कम हो जाएगा। हाँ,
अभी हम जितना पढ़ेंगे उसमें क्लैरिटी होगी ज्यादा। फिर भी अभी स्वामित्व आया, उसकी बात जितनी बढ़ेगी उतनी क्लैरिटी होने ही वाली है। एवं सोलस कसायाणम। इसके लिए वो पांचवा और नौवा भाग फिर पढ़ना, जिसको जितना हो सकता है पढ़ो,
आज पढ़ना ही
तो ये क्लैरिटी होगी। संक्रमण का है, संक्रमण में क्या लिया है, वहाँ तो अपकर्षण लिया, उत्कर्षण लिया और पर प्रकृति रूप संक्रमण लिया, यहाँ मात्र उदीर्ण ही लेनी है। संक्रमण तो मिथ्यात्व का संक्रमण तो ऊपर के गुणस्थानों में भी होगा, क्योंकि वो समय मिथ्यात्व समय प्रकृति रूप से तो होता रहता है, परंतु यहाँ उदय रूप उदीर्ण वाली बात है, क्योंकि ये तो अपना अभ्यास हुआ है ना, अभी थोड़ा रिमाइंड करना है रिविजन रूप, तो ये बात अधिक समझेगी, अभी क्या करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इसके बाद रिविजन होगा ग्यारहवीं के बाद
एवं सोलह कषायाणम। इसी प्रकार सोलह कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का स्वामित्व जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, यहाँ पर स्वामित्व की विषयभूत सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि संबंधी अनुभाग उदीर्णा के महात्म्य का, महात्म्य ने वो उसके अधिकता ज्ञान कराने के लिए यह अल्प बहुत्व जानना चाहिए। यथा सम्यक्त्व के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के अनुभाग उदीर्णा स्तोक है, उससे द्विचरम समय में कितनी है, अनंत गुणी है, उससे त्रिचरम समय में अनंत गुणी अधिक है, इस प्रकार चतुष्चरम समय से लेकर सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि के अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उल्टे आए और फिर उसको बढ़ाओ, यहाँ सर्व संक्लेश में ले जाओ, इसलिए अन्य योग व्यवच्छेद से यहीं पर मिथ्यात् और सोलह कषायों का उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए।
ये योग व्यवच्छेद में क्या लेना, सेम योग से लेना, नहीं
ये योग यानी ये योग वाला नहीं है, अन्य योग व्यवच्छेद यानी अन्य कोई कारण नहीं है वहाँ पर। सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणाम यही एक कारण है उसके स्वामित्व का। सम्मतस्य उत्कर्षानुभाग उदीर्णा कस, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। मिच्छत्थायुमुह चरिम समय असंजत सम्मादिच्छिस्स सव संकिलित्थस्स। मिथ्यात्व के सन्मुख हुए अंतिम समयवर्ती असंयत समय दृष्टि सर्व संक्लेश परिणाम वाले जीव के होती है। जो असंयत समय दृष्टि जीव सम्यक्त्व का वेदन करता हुआ और परिणाम प्रत्ययवश मिथ्यात्व के अभिमुख होकर अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुणी संक्लेश की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, संक्लेश में अनंत गुणी वृद्धि होती गई, उस अंतिम समयवर्ती असंयत समय दृष्टि सर्व संक्लेश परिणाम वाले जीव के प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि जीवादि पदार्थों को दूषित कर मिथ्यात्व को जाने वाले उस जीव के उत्कृष्ट संक्लेशवश बहुत अनुभाग की हानि का अभाव होने से सम्यक्त्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा वहां पर सुव्यक्त पाई जाती है।
ये जीवादि पदार्थों को दूषित कर दिन मान्यता में दूषित कर,
वही तो जीवादि ने सभी पदार्थ है ना, यानी तत्वों की मान्यता भी उससे तो यानी अतत्व श्रद्धान होने जाने वाला है अभी। शंका, सर्वत्र उत्कृष्ट संक्लेश से बहुत अनुभाग हानि को नहीं प्राप्त होता, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। यानी उसकी जो अनुभाग है वो उसमें से कुछ हानि नहीं होती, ये बात बता रहे हैं। इसी सूत्र से जाना जाता है।
ये अनुभव की हानि का अभाव होने से सत्ता की अपेक्षा बात की, अनुभव की हानि का अभाव सत्ता में नहीं होता ऐसे कहा है?
ज्यादा हानि नहीं होती ऐसा कहा।
अच्छा, मिनिमम जो आगे जो बताया,
बहुत अनुभव हानि को नहीं प्राप्त होता। वैसे सम्यक्त्व की अनुभव कम कब होता है? सम्यक प्रकृति का अनुभव
नहीं, वह तो उज्ज्वलना में होगा ना। नहीं, वहाँ पे तो अनुभाग की बात,
अनुभाग की बात, वो थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रहता है।
हाँ, वहाँ पे तो कोई
सम्यक को प्राप्त होने से लेकर सम्यक का अनुभाग वैसा का वैसा
रहता है,
अनलेस वो क्षपणा में चला जाता है और वहाँ उसके जो अनुभाग के कंडक्ट होते हैं। जैसे स्थिति में तो हमने विषय योजना के काल में भी स्थिति घटती है देखा था, वैसे अनुभाग में कोई परिवर्तन
नहीं होता,
वो तो मात्र उसके सपना में ही होगा। यानी उसके सत्ता वाले अनुभाग में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो सम्यक दृष्टि रहा या मिथ्या तो के सम्मुख हुआ, फिर भी सर्व संकलेश होने के कारण ऐसा उसको बता दिया। अब पूछते सम्मा मिच्छत उपकस्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्ता ही मुह चरिम समय सम्मा मिच्छा इच्छिस्य सर्व संकलितस्य, मिथ्यात्व के अभिमुख हुए सर्व संकलेश परिणाम वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। यहाँ पर स्वस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि का निराकरण करने के लिए मिथ्यात्व के अभिमुख यह विशेषण दिया है, अथवा सम्यक्त्व के अभिमुख हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि का प्रतिषेध करने के लिए मिथ्यात्व के अभिमुख यह विशेषण दिया है। क्योंकि यहाँ तीसरे में से चौथे चढ़ने वाले जे विशुद्धि होगी ज्यादा, और तीसरे में से पहले में आने वाले के संकलेश ज्यादा हो गए। इसलिए मिथ्यात्व के अभिमुख यह विशेषण दिया है, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट संकलेश का अभाव होने से वहां पर यानी सम्यक्त्व के अभिमुख वाले के प्रकृत स्वामित्व के विधान का उपाय का अभाव है। द्विचरम आदि अधस्तन समयों में स्थित सम्यक मिथ्या दृष्टि का प्रतिषेध करने के लिए अंतिम समय यह विशेषण दिया है। शेष गुणस्थानों में प्रकृत स्वामित्व के अत्यंत अभाव को दिखलाने के लिए सम्यक मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश किया है, क्योंकि उसका उदय वहीं पर होगा तो उदीर्णा भी वहीं पर होगी। मंद संकलेश से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा नहीं होती। अलग अलग जीवों के अलग अलग संकलेश हो गए, तो जहाँ मंद संकलेश है वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा नहीं होती। इसका ज्ञान कराने के लिए सर्व संकलितस्य यह विशेषण दिया। इसलिए इस प्रकार के जीव के प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह सिद्ध हुआ। इत्थि वेद पुरुष वेदानम उक्कस्य अनुभाग उदीर्णा कस्य सुगमम्, स्त्रीवेद और पुरुषवेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। पंचेन्द्रिय तीरखस्य अठवास जादस्य करहस्य सर्व संकलितस्य, आठ वर्ष की आयु वाले तथा सर्व संकलेश परिणाम वाले पंचेन्द्रिय तीरंच ऊंट के होती है।
तो सूत्र में ऊट का है, सूत्र में ऊट की बात
कर रहा है सर।
हाँ,
हाँ
में कई बात
और हाथ से रहती है और वो सतार ससुराल की बात
जबरदस्ती की मिनिमम 84,000 वर्ष होती है फिर देखा कि अनंत मंदिर की सत्ता नहीं हो फिर भी उदय आ सकता है।
हाँ वही ये इसमें बहुत सारी बातें हैं।
फिर हमने नई बात देखी कि रति की जो है रति की सत्ता होती है फिर नई बात देखी कि हमने जो नरक में जो है
रति शोक लगातार ऊंट की बात पहले भी पढ़ी थी हमने शायद मुझे हाँ हाँ मुझे पक्का याद है 8 वर्ष के ऊंट में ऊंट की हाँ
नहीं ये पुस्तक से तो पहले मालूम नहीं हम लोग नहीं आए
दोनों ही रही ना
नपुंसक ही है ऊंट में ऊंट तो तीनों होते होंगे
जब उनकी बात आएगी तो कहेंगे और उनकी उत्कृष्ट उनके नहीं होती ना नपुंसक वेद वाले अन्य भी है उत्कृष्ट करने वाले इसलिए उसकी होती है। वो तो बात है
रेगिस्तान में उनका कुछ ना होगा ना जैसे अपन ने आयु की वेदना में जलचर को लिया था है ना क्योंकि वो पानी में रहता है तो उसके मतलब इसी होता ना।
देखो ये तो केवल ही गम्य है ये इसका कुछ कारण हमें ऐसा नहीं लगा था। यहाँ पढ़ते हम 8 वर्ष की आयु वाले तथा सर्वसंकलेश परिणाम वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच ऊंट के होती है। यहाँ सूत्र में मनुष्य गति और देवगति का निराकरण करने के लिए पंचेंद्रिय तिर्यंच पद का निर्देश किया है क्योंकि उन गतियों में उत्कृष्ट वेद रूप संकलेश का अभाव है। उत्कृष्ट वेद को भी संकलेश में ले लिया है ना। किस प्रमाण से जाना जाता है इसी सूत्र से जाना जाता है। 8 वर्ष से पूर्व सर्वोत्कृष्ट वेद रूप संकलेश नहीं होता। इस बात का ज्ञान कराने के लिए उसके विशेषण रूप से 8 वर्ष जात यह वचन दिया है। गर्भ के ही स्त्री वेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होती है। प्राकृत में करह लिया है और वही प्राकृत में ही नीचे चौथी लाइन में करभ से लिखा था। करभ यानी ऊंट नहीं प्राकृत में भी लिया ना करभ से ती वयणम जादि विशेष है ना तथ्य विधि करह भी लिया और स्पष्टीकरण में करभ भी लिया। हाँ ये वो ये संस्कृत है अने वहाँ 8 वास जादव लिखा। गर्भ के ही स्त्रीवेद और पुरुषवेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होती है इस बात का कथन करने के लिए करभस्य यह वचन दिया है। वहाँ करहस्य एक्चुअली उन्होंने संस्कृत दिया ये क्योंकि संस्कृत में स्य लगता है प्राकृत में डबल स लगता है करभस लिखा है वो प्राकृत है और यहाँ करभस्य लिखा है स्य डाला उन्होंने। उसके भी उत्कृष्ट संकलेश से परिणत अवस्था के होने पर ही उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण होती है इस बात का ज्ञान कराने के लिए सर्वसंकलिष्टस्य अब वहाँ संकलिष्टस्य है ना ये संस्कृत जो है इसका भाषांतर उसको लिया यहाँ पर। इसलिए इस प्रकार के जीव के प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह सिद्ध हुआ यानी उसके अधिक से अधिक अनुभाग रूप से उदीर्ण हो रही है। पहले हम देखते हैं ना कितने उदय ऊपर से नीचे आए नीचे आना यानी वो तो उदय में आना इतना ही लेना कम से कम घटा कर उदय में आ रहा है। नौ से वेद अरदि सोग भय जुगुन छाण मुक्कस अनुभाग उदीर्ण कस नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। सप्तमाय पुरवीय नेरयस्य सव संकिलिट्ठस्य, सातवीं पृथ्वी में सबसे अधिक संकलेश परिणाम वाले जीव के होती है। यहाँ सातवीं पृथ्वी में इन कर्मों के उत्कृष्ट स्वामित्व के विधान करने का अभिप्राय कहते हैं। यथा ये प्रकृतियां अत्यंत अप्रशस्त स्वरूप हैं, क्योंकि ये एकांत से दुख के उत्पादन करने की स्वभाव वाली हैं। एकांत है ने मात्र दुख से ही
दुखी उत्पन्न,
यानी उसमें कोई अन्य बात नहीं है, एकांत से यानी निश्चित रूप से।
ये सम्यक्ते है वो भी एकांत है,
वो एकांत है, वो बात नहीं है।
एकांत का अर्थ अलग है,
एकांत के अलग अलग अर्थ आते हैं ना।
दो ऑप्शन और
ये एकांत अनेकांत के अर्थ में ये नहीं है, ओनली मात्र मात्र दुख के उत्पादन करने की स्वभाव वाली है, इसलिए इनकी उदीर्णा का सातवीं पृथ्वी में ही उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि उससे दुख का निधान भूत दुख का भी निधान अन्य कोई स्थान तीन भुवन के भीतर कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
बिल्कुल
उनकी उदीर्णा का कारण आगे लिखा है, उनकी उदीर्णा का कारण अशुभतर बाह्य द्रव्य भी वहीं पर बहुलता से संभव है। अंतरंग बहिरंग दोनों कारण होंगे वहां पर भी, उसका अंतरंग कारण क्या है?
संकलेश।
संकलेश परिणाम, संकलेश परिणाम कर्म की उदीर्णा उसका अपना उपादान है, उसके लिए यह निमित्त रूप से संकलेश परिणाम लेना। हस्य रदीन मुक्कस अनुभाग उदीर्णा कस, हास्य रति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। सदार यह दोनों नाम आए, सदार सहसार देवस्त सव संकिलिट्ठस, सब वो हुआ है सब वो। सबसे अधिक संकलेश परिणाम वाले संकलेश लिया शतार और सहस्रार कल्प के देव के होती है, क्योंकि राग बहुल, अच्छा इसका कारण यहाँ बता दें, राग बहुल शतार और सहस्रार कल्प के देवों में हास्य और रति के बहुत कारण पाए जाते हैं, यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट से छह मास तक वहाँ हास्य और रति का उदय होता है, इस परमागम के उपदेश से यह सिद्ध है। इस प्रकार ओग से उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ, वो भी है तो अप्रशस्त प्रकृति ही, इसलिए मोहिनी के सभी प्रकृतियों में उत्कृष्ट संकलेश से ही कारण लिया है, अन्य जैसे शुभ प्रकृतियां होती वैसे इसमें तो है ही नहीं है। नपुसक वेद अत्यंत जिसको कहेंगे अप्रशस्त लिए हैं। संकलेश ही लिया इसको भी, वो भी कषाय है और वो भी अशुभ ही है ना, क्योंकि हमने तो हास्य को अच्छा माना है ना।
मैं अभी पूछने वाला था वो प्रशस्त प्रकृति है,
हास्य प्रशस्त लगती है ना?
नहीं,
हास्य प्रकृति प्रशस्त लगती है,
नहीं प्रशस्त लगती है,
लगती है हाँ। मोहिनी कहो या सभी गाती है क्या है, अप्रशस्त ही है।
पूछा नहीं,
हास्य क्लब चलते हैं ना,
हाँ।
सुबह हम घूमते तो भी आवाज आती, कभी कभी जोर जबरदस्ती से खोटा खोटा हंसते। वो दिशे में चलता
है सोसाइटी किला
सब जगह चलता है
बहुत जोर से
कुछ भी नया निकालो आपको कोई वो साथी मिल जाएंगे
हम लोग को कितनी बार बुलाते हैं आप लोग ज्वाइन हो जाओ हम लोग को
उनको बोलना ज्वाइन होने के क्या आपको देख देख के हंसी आती है ऐसे कहना उनको
देख के हंसता वो भी बुरी बात है ना
हाँ देखो इस प्रकार रोग से उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ये तो उत्कृष्ट की बात है वहाँ देखा हमने कारण उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम से अब आदेश का कथन करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं यथा स्वामित्व दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्ट का प्रकरण है निर्देश दो प्रकार का है ओह और आदेश वहाँ ओह से निर्देश यद्यपि सूत्र में पूरी तरह से निरूपित कर दिया है तो भी मंदबुद्धि शिष्यों को सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए ओह से बतलाएंगे ये हमारे लिए उपकार है ओह से मिथ्यात्व और सोलह कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम से युक्त है उसके होती है नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले अन्यतर सातवीं पृथ्वी के नारकी के होती है यानी ओग से ही बात चल रही है उत्कृष्ट अनुभाग वाले के लिए तो किसी भी गति की बात है यानी ओग से ही बता दिया उन्होंने परंतु नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा की सातवीं पृथ्वी में वो उसकी बात बताएं ओग से भी और आदेश से भी बताएंगे स्त्रीवेद और पुरुष वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है आठ वर्ष की आयु वाले पंचेंद्रिय तिर्यंशी योनि के योनिक नहीं बराबर है योनिक बराबर योनिक है ना योनि वाला ऊंट के होती है हास्य और रति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले अन्यतर शतार सहस्रार कल्प के देव की होती है सम्यक्त की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है तत्प्रायोगी उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले मिथ्यात्व के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती अन्यतर सम्यक दृष्टि जीव के होती है सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है तत्प्रायोगी उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले मिथ्यात्व के अभिमुख हुए अन्यतर अंतिम समय एक मय एक्स्ट्रा हुआ है समयवर्ती सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव के होती है ये हमने पढ़ा था इसी को फिर यहाँ रिपीट कर दिया अब आदेश से अलग बात बताएंगे फिर से दोबारा नारकियों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और हास्य रति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है
रति भी ले लिया
हाँ ले लिया ना यहाँ पर चारों गतियों की अपेक्षा कहाँ ज्यादा है तो हम कहेंगे तो शतर और नारकियों में
उत्कृष्ट संक्लेश वाला
सब जगह लिया उसको ऐसा कोई इसने कहा सरति के बारे में कि सातवें नरक की बात है ऐसा नहीं कहा वहां पर सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व नपुसक वेद अरति शोक भय और जुगुप्सा का भंग ओग के समान है ओग में बता दिया था सातवें नरक में होती है सम्यक मिथ्यात्व तो अपने अपने यानी सम्यक तो चौथे में से मिथ्यात्व में आने वाले के लिया और
मिथ्यात्व के सम्मुख की हां
सम्यक मिथ्यात्व को भी मिथ्यात्व के सम्मुख लिया पहली पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और सात नौ कषायों की उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा किसके होती है उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग उग के समान है। क्या कहते उग के समान है वो तो मिथ्यात्व के सम्मुख वाला जीव लेना वहां पर तिरियन चौंग में ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और नपुसक वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिरियन चत्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिरियंश पर्याप्तों में स्त्रीवेद नहीं है और योनिनियों में पुरुष वेद तथा नपुसक वेद नहीं है। पंचेंद्रिय तिरियंश अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 नौकषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर जीव के होती है। मनुष्य त्रिक में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग उग के समान है। वो सर्वत्र समान है। देवों में मिथ्यात्व 16 कषाय स्त्रीवेद पुरुषवेद अरति शोक भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व हास्य और रति का भंग ओघ के समान है। ओघ में बता ही दिया था शतार सहस्रार वाले हास्य रति के लिए भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है।
ये हास्य रति में 6 महीना कंटिन्यूस होते ही रहता है तो वहाँ पे पहले समय में उत्कृष्ट उदीर्णा होगी?
ऐसा कुछ नहीं है।
कब कहाँ पे भी
6 महीने में जहाँ संकलेश ज्यादा होगा तभी होगी। कंडीशन वो डाली ना उनमें वो संकलेश वाले जीव ले जाते पहले बताया उन्होंने। देखो हास्य रति में ओग में क्या बताया था
कहाँ पे भी वहाँ स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया 6 महीने
वहाँ क्या दिखा था हास्य रति में उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर शतार सहस्रार कल्प के देव के यहाँ भी क्या लिखते हैं ओके समान ही बताए ना।
अच्छा
बाद में उसका और घटकर उदय में आएगा सत्ता में नहीं रहेगा वो बात नहीं 2 समय तक वही का वही रहेगा बंद की अपेक्षा तो अंतर्मुहूर्त तक वो उसका उतना का उतना बंधेगा उसकी बात यहाँ नहीं लेनी। भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है। इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओक के समान है। आनत कल्प से लेकर 9 ग्रहवेग तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? तत्प्राय संकलेश परिणाम वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होते हैं। हाँ उत्कृष्ट संकलेश कंडीशन तो है सम्यक का सम्यक मिथ्यात्व का भंग के समान है, इतनी विशेषता है। तत् प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाले के होती है। अनुदिष्ट से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? तत् प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाले अन्यतर वेदक समय दृष्टि के होती है। क्योंकि यहाँ कौन कौन से समय दृष्टि है?
सभी समय दृष्टि,
शायिक भी है, वेदक भी है, और अपर्याप्त काल में द्वितीय उपसंग। इसलिए कंडीशन डाली वेदक समय दृष्टि के अधिक संकलेश वाले हो गए। अनुदिष्ट से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? तत् प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाले अन्यतर वेदक समय दृष्टि के होती है। अब यहाँ ना मिथ्यात्व की होगी ना समय मिथ्यात्व की होगी,
तो एक ही व्यक्ति
यानी हाँ अनंत आनंद भी नहीं होगी। तो अपने अपने योग्य जो प्रकृतियां उसकी बात यहाँ सोचना है। मिथ्यात्व गुणस्थान ही नहीं है ना, ना ही समय मिथ्यात्व गुणस्थान है।
और सब पुरुष है, अन्य वेदों का
सवाल नहीं है यहाँ पर। ये तो अब तक उच्चारणाचार्य और उसके पहले चुन्नी सूत्र में उत्कृष्ट की बात एक साथ ली दोनों में। एक तो जघन्या उदीर्णा, इससे आगे जघन्य अनुभाग उदीर्णा के स्वामित्व का अधिकार है। इससे आगे स्वामित्व विशेषण से युक्त अनुभाग विषय जघन्य उदीर्णा करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। संजमाहि मुह चरिम समय इच्छा इच्छिस सव विशुद्धस्य, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होती है।
ये द्रव्यलिंगी को ही होगी ना,
द्रव्यलिंगी को संयम होगा क्या?
नहीं नहीं, जब भी वो संयम के अभिमुख है तभी होगी कि कोई
भी। अच्छा, जो ऑलरेडी द्रव्यलिंगी है और वो भावलिंगी होने जा रहा है, ऐसा जीव लेना,
ऐसा ही लेना। हाँ।
नहीं तो आप कहेंगे वो क्योंकि उसी के प्रकट होगा ना।
हाँ।
भावलिंग, क्योंकि पहली कंडीशन है द्रव्यलिंग हुए बिना वो नहीं होगा, परंतु अभी वो संयम प्राप्त करने जा रहा है, सातवें में जाने वाला है, नेक्स्ट समय में करण लब्धि का अंतिम समय है उसके। मिथ्या दृष्टि जीव संयम के अभिमुख होकर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय तक जाता है, इसलिए संयम के अभिमुख हुए तथा सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से विशुद्ध लिखना, यह हुआ है। वह तीसरी लाइन में सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से विशुद्ध हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा होती है। प्रदेश उदीर्णा यहाँ मैक्सिमम होगी और अनुभाग उदीर्णा मिनिमम होगी, क्योंकि विशुद्धि से प्रकर्ष से अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बहुत कम होकर प्रकर्ष से ने
कम होते ना?
नहीं, प्रकर्षण मुख्यता से या मेजोरिटीली किसका अनुभव बहुत घटता है? जो अधिक अप्रशस्त है उसका अनुभव बहुत ज्यादा घटकर उदय में आएगा। विशुद्धि के प्रकर्ष से विशुद्ध, क्योंकि विशुद्धि के प्रकर्ष से विशुद्धि के कारण
विशुद्धि से तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग एकदम कम हो जाएगा, पर यहाँ पे यथा योग्य विशुद्धि से।
क्यों यथा योग्य विशुद्धि?
क्योंकि वो सभी आचरण में सभी है और अभी द्रव्यलिंगी से भावलिंगी होने को जा रहा है तो उसका ऑलरेडी मंद अनुभाग उदय में है,
उसकी विशुद्धि बढ़ रही है ना प्रति समय।
हाँ।
चौथे में जाए, पांचवे में जाए या सातवें में जाए, कंडीशन क्या है, प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती चली जाती है। ये अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में यही होता चला जाता है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना।
हाँ। और यहाँ पे अनुभव के मिनिमम,
तो चौथे में जाने वाले से सातवें में जाने वाले का विशुद्धि ज्यादा होगी।
हाँ। तो चगन्य अनुभाग उदीर्ण,
तो प्रकर्ष से यानी मुख्यता से अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बहुत कम होकर, सभी अप्रशस्त ही है परंतु यहाँ प्रशस्त कर्मों में अनुभाग का बढ़ना होता है
और अप्रशस्त पे कम होता है,
कम होता है,
विशुद्धि ज्यादा उतनी
और ज्यादा
अनुभाग और घटेगा।
तो चौथे में जाने वाले से सातवें में जो जाने वाला है उसका अनुभाग मिनिमम होगा।
हाँ, मिनिमम होगा, पर उसकी सत्ता में मिनिमम होगा तो मिनिमम अनुभाग कम होगा ना, जो सत्ता वाला जो ज्यादा एकदम जो संकलित गार्ड।
अभी सत्ता की बात मत करो यहाँ पर, क्योंकि सत्ता के अभी उदय में किस रूप से आ रहा है, अत्यंत हीन होकर उदय में आ रहा है।
हाँ।
उदय किस रूप से चल रहा है, सत्ता की अपेक्षा देखो तो एक इंद्रियों का और हीन है। जो सत्ता है उस रूप से उदीर्णा नहीं होती है यहाँ, परिणाम के वश चल रही बात।
मेरा क्वेश्चन क्या था, अनुभाग की मिनिमम कटौती होती है, जो उदीर्णा जो होती है वो मिनिमम वाला
नहीं, कटौती मिनिमम नहीं होती, कटौती मैक्सिमम होती है। मिनिमम रूप से उदय में आ रहा है,
अच्छा वापस क्लियर करते,
फिर कंफ्यूजन चल रहा है। अनुभाग किस रूप से उदय में आ रहा है, अत्यंत हीन होकर उदय में आ रहा है, ऐसा हीन अन्य कहीं नहीं है मिथ्या तो गुणस्थान है। सत्ता की अपेक्षा अनुभाग देखो तो एक इंद्रियों में मिनिमम है, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त को, सत्ता की अपेक्षा बात नहीं चल रही यहाँ पर।
नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि जो शुक्ला लीचे वाला जीव है, द्रव्यलिंगी जीव, जिसने सत्ता में कटौती बहुत कर दी है,
नहीं कटौती की, एक इंद्रिय से कम नहीं की है, निकालो ये इसीलिए मैंने कहा पांचवा और नौवा भाग पढ़ना, पांचवा भाग इसको मिथ्या तो की, उसने इतनी कम नहीं की है, उदय रूप से यहाँ बात चल रही है, उदय रूप से वो संयम के अभिमुख वाला मिथ्या दृष्टि अंतिम समय में लेना, सत्ता की अपेक्षा अनुभाग विभक्ति लेने जाओ तो सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त तो में ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ सत्ता में जो कुछ है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय के योग्य बंद भी कर रहा है कि नहीं।
हाँ।
तो उसकी सत्ता में ज्यादा है एक इंद्रियों से।
हाँ।
एक इंद्रियों का द्विस्थानीय था
और
यहाँ चतुस्थानीय है, परंतु अत्यंत हीन होकर उदय में, उदय किस रूप से चल रहा है ये बात चल रही है। अब यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा में उदय उत्कृष्ट रूप से हो रहा है और जघन्य में उदय जघन्य रूप से हो रहा है, ये बात लेना है। वो कितना उसने कम किया उसकी बात यहाँ मत सोचो, किस रूप से उसके उदय हो रहा है, किस अनुभाग में उसका उदय हो रहा है, प्रथम ऑप्शन ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रथम ऑप्शन के काल में वो अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती चली जाती, तीनों करण होते हैं ना यहाँ पर, और वो डायरेक्ट संयम में जाने वाला जीव लिया। हाँ, अभी हम वहां तक आए कहाँ है, मैंने भी नहीं पढ़ा, इसलिए सम्यक और संयम को युगपत ग्रहण करने वाले, नहीं तो लोग समझेंगे बाह्य संयम अंगीकार क्या, अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के यह जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। नहीं, जितने आगे पढ़ेंगे उतनी क्लैरिटी होगी, यहाँ किस रूप से उदय चल रहा है, तो जघन्य अनुभाग रूप से उदय चल रहा है, इतना जघन्य अनुभाग का उदय एक इंद्रियों के भी नहीं होगा, जहाँ सत्ता में जघन्य पड़ा है, पंच इंद्रियों की सत्ता में इतना जघन्य नहीं हुआ
था।
अभी उदय
की चल रही है, हो रही है,
अभी संक्रमण चलेगा वो मिथ्यात्व की क्षपणा में, उसके सत्ता में जो है वो मिनिमम होगा उसका।
हाँ।
बाद में भी होगा, फिर भी सभी गतियों की अपेक्षा से एक इंद्रिय में उससे भी जघन्य है, वहां पर भी उसका ऐसा नहीं लिया है। सम्मतस्य जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, सम्यक की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। समयाहियावलीय क्षीण दंशन मोहनीयस्य, अक्षीण दंशन मोहनीयस्य, समय अहिय आवलीय अक्षीण दंशन मोहनीयस्य, इन्हें भी दर्शन मोह की क्षपणा जिसकी पूरी नहीं हुई है, अक्षीण दर्शन मोहनीय लिया, जिसके अभी दर्शन मोहनीय की क्षपणा संपन्न नहीं हुई है, संपन्न नहीं हुई यानी समाप्त नहीं हुई है, किंतु उसमें एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, उसके होती है। क्योंकि दर्शन मोहनी के क्षपक के तीव्र परिणामों से बहुत कांडक घातों को प्राप्त कर पुनः अंतर्मूर्त काल तक प्रति समय अपवर्तना के द्वारा अच्छी तरह घटाकर स्थित हुए सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा वहां पर जघन्य रूप से निर्बाध पाई जाती है। जिसके अभी दर्शन मोहनी की क्षपणा पूरी नहीं हुई किंतु उसमें एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, उसके यह जघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय होती है। उसके बाद उसको उदय कहेंगे हम, उदीर्णा नहीं कहेंगे बाद में। इससे पूर्व की एक स्थानीय और द्विस्थानीय समस्त अनुभाग उदीर्णाएं क्रम से अनंत गुणी हैं। आवली और दो समय बाकी थे तब उसका अनंत गुणा था, क्योंकि अनु समय अपवर्तन चल रहे ना, प्रति समय अनंत गुणा घट रहा है, इसलिए उनके निराकरण द्वारा यहाँ पर ही जघन्य स्वामित्व ग्रहण किया है। सम्मामिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्य, सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। सम्मत्ता ही मुह चरिम समय सम्मामिच्छा इच्छिस्स सर्व विशुद्धस्स, सम्यक्त्व के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के होती है। ये कौन से गुणस्थान में जाने वाला है अश्विन भाई?
सातवें में जाएगा ना?
सातवें में जाएगा। आप क्या कहते हैं? चौथे में जाएंगे। लक्ष्मी बहन कौन? सातवें में। मयंक भाई
नहीं, संयम से अभी वो
अभी अभी, अभी कुछ बोलो मत,
गलत हो।
हाँ, मंदा बहन
तीसरे से सातवें में।
क्यों? हाँ, तीसरे से चौथे में ही जाता है ऊपर। नीचे जाए, नीचे जाएगा तो पहले नहीं, उसके दूसरे कोई रास्ते नहीं है। अभी गुणस्थान में आना पड़ेगा।
मेरे को बीते लगा के गुंजर में, और उन्होंने भी बताया कि
नहीं, गुणस्थान की क्लैरिटी हुए बिना इसमें कुछ नहीं, मान नहीं, दम नहीं है। तीसरे से चौथा ही होता है ऊपर के गुणस्थान। हाँ, ऊपर से गिरकर आ सकता है कि नहीं आ सकता? छठे से, पांचवे से, चौथे से, तीसरे में आएगा कि नहीं
आएगा?
गिरने के लिए आ सकता है, चढ़ने के लिए चौथा या पहला दो ही है। चौथा या हाँ, नीचे गिरने के लिए पहला, उसके जाने के लिए, गमन के लिए, गमन गमन मुझे कहना है।
तो भावली भी मुनि भी सातवें से
छठे में ही
आएगा, छठे में आएगा, पीछे छठे से पांचवे, चौथे और तीसरे में आ सकता है।
डायरेक्ट डायरेक्ट पांचवे में, डायरेक्ट चौथे में, डायरेक्ट तीसरे में, डायरेक्ट दूसरे में, डायरेक्ट पहले में आ सकते हैं।
तो भावलिंगी जब भी तीसरे में आएगा तभी वापस वो सम्यक्त्व के अभिमुख होगा,
चौथे जाएंगे,
चौथे में ही जाएगा।
बिल्कुल, चौथे से चलेंगे फिर। सातवें का गमनागमन, छठा आठवां और मरण के चौथे में।
नहीं नहीं छठा आठवां क्या बताए?
वो सातवें में से कहाँ जा सकता है गमन। हाँ। वो बात चल रही है। यहाँ कहा क्या कहा? सम्यक के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के होती है शंका। अरे यहाँ पूछा गया मैंने भी पढ़ा नहीं था। यहाँ पर संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के होती है ऐसा क्यों नहीं कहते? समाधान, नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि के संयम गुण की प्राप्ति अत्यंत भाव रूप से निषिद्ध है, यानी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो अत्यंत भाव दो द्रव्य में वही बात, वो बात नहीं अत्यंत, जैसे एकांत शब्द आया था ना वैसे ही अत्यंत भाव यानी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक के अभिमुख हुए तत्प्रायोगिक सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि से विशुद्ध अंतिम समयवर्ती समय मिथ्या दृष्टि के प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि के बिना वो चौथे में कैसे जाएगा? संकोच ज्यादा हो गया तो पहले में चला जाएगा। अनंतानुबंधिनम जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्स, अनंतानुबंधियों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। संयमायम चरिम समय इच्छा इट्ठिस्स सर्व विशुद्धस्स, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होती हैं। मिथ्यात्व के जघन्य स्वामित्व विषयक सूत्र के समान इस सूत्र के अर्थ का कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कथन में कोई विशेषता नहीं है। अनुभाग विभक्ति में किसको जगन्य होता है? अनंतानुबंधी का जगन्य कहाँ पर होता है? सत्ता में, सत्ता में
विषयोजना करते
हैं, विषयोजना करके जो संयोजना कर रहा है उसके
पहले समय
तब उसके अनुभाग विभक्ति जगन्य होती है। अब यहाँ कुछ अलग बात है, अभी मिथ्या दृष्टि है और सातवें गुणस्थान में जाने योग्य उसके चल रहा है भी करण लब्धि के परिणाम, इसके यहाँ उदीर्णा की बात है ना, तो जघन्य रूप से मिनिमम अनुभाग रूप से यहाँ पर उसका उदय उदीर्णा होगी। अपच्चक खान कषाय से जघन्य अनुभाग उदीर्णा कस्स, अप्रत्याख्यानावरण कषाय की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। संयमायमो चरिम समय असंयत सम्मा इट्ठिस्स सर्व विशुद्धस्स, अभी फॉर्मूला तो वही लगाना है। मिथ्या दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण का उदय उदीर्ण तो अधिक होगी, अब चौथे गुणस्थान वाले को भी इसका उदय है तो उसके कम चलेंगे। अब चौथे में भी सर्व विशुद्धि कब होगी? चौथे से जब सातवें में जाता है तब होगा। इसलिए कहते हैं संयम के अभिमुख हुए, ऊपर पढ़ा ना मैं, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती असंयत समय दृष्टि के होती है। संयम के अभिमुख हुआ असंयत समय दृष्टि जीव, संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव की विशुद्धि से अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्धि को प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं? जो पहले से सातवें में जाना है उससे जो चौथे में से सातवें में जाने वाला जीव है उसकी विशुद्धि अनंत गुणी अधिक है। प्रति समय अनंत गुणे हीन अप्रत्याख्यान कषाय के अनुभाग को अंतर्मूर्त मात्र विशुद्धि काल के अंतिम समय तक उदीरित करता है। इसलिए विषयांतर के परिहार द्वारा यहीं पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व का निश्चय करना चाहिए। विषयांतर ने अन्य कोई कारण नहीं है उसके, उसका परिहार ने निराकरण के द्वारा इसी कारण से यहाँ ले लेना है। यहाँ अंतर्मूर्त मात्र विशुद्धि लिए है, यहाँ ये प्रथमोक्षम जैसे करण लब्धि की बात नहीं ली यहाँ पर। अभी यहाँ करण परिणाम लेना नहीं लेना वो बात, अंतर्मूर्त मात्र विशुद्धि लेना
दो करण तो हो गए,
दो तो करण हो गई, परंतु हाँ करण के बिना इतनी अनंत गुणी विशुद्धि नहीं होगी। हाँ यही रुकना है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत होनो। मैं भाई